नमस्ते। बुक वन कैंटो वन में हम लोगों ने सावित्री का प्रारंभिक सीन, उसके बारे में श्री अरविंद हम लोगों को बताते हैं। और वो उस एक कैंटो में मनुष्य की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की ओर, अचेतन अवस्था से सचेतन अवस्था की ओर, अतिचेतन अवस्था की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर, ये यात्रा है। लेकिन ये तो हम लोगों ने पढ़ा है बृहदारण्यक उपनिषद में बड़े सुंदर शब्दों में, असदो मा सद्गम्या, तमसो मा ज्योतिर्गम्या, मृत्युर मा अमृतम गम्या, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन एक चीज़ है जो वहाँ हम लोगों ने नहीं पढ़ी है और वो श्री अरविंद रिवील कर रहे हैं कि इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो पहले कैंटो में ही हम देखते हैं कि इस यात्रा में जगन माता हमारे साथ हैं, डिवाइन मदर है। ये केवल सावित्री का इनकार्नेशन या ये इनकार्नेशन की बात नहीं है। डिवाइन मदर माँ इस अपने भौतिक जन्म के बारे में बताती हैं कि जब से धरती बनी है तब से मैं उसको छोड़कर नहीं गई, मैं सदैव यहाँ, जब भी संभावना थी किसी ना किसी रूप में प्रकाश की एक किरण के अभिव्यक्त होने की, मैं यहाँ पर रही। और फिर हम देखते हैं सीमा के जो पास्ट लाइफ्स हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इवोल्यूशनरी जब भी एक क्राइसिस आया, मोड़ आया, तो उस समय सीमा है। अब कोई पूछ सकता है कि हाँ, लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं मालूम है? हम लोगों ने विष्णु भगवान के दशावतार सुने हैं लेकिन जगन माता के अवतारों को नहीं सुना। तो यही तो बात होती है कि एक नारी और पुरुष में, एक फेमिनाइन, नारी पुरुष वो नहीं कि एक फेमिनाइन जो एनर्जी जो है, पावर, वो काम करती है, एक्सिक्यूट करती है लेकिन बैकग्राउंड में रहती है। और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत शोर शराबे के साथ, डंके के साथ, आपने सुना होगा राजाओं के बारे में, सबने सुना है राजा होते थे, लेकिन इतिहास में ऐसी अद्भुत रानियां हुई हैं लेकिन मनुष्य उनके बारे में नहीं जानता है। दो चार झांसी की रानी भारतवर्ष में और भी हुई हैं, साउथ में बड़ी अद्भुत रानियां हुई हैं, दो चार हुई हैं। क्वीन हात्सेपुट जो माँ का इनकार्नेशन थी, एलिजाबेथ वन, या रशिया में क्वीन कैथरीन, ये हुई है इतिहास में कुछ एक रानियां, क्वीन तई। पर अधिकांश हम देखते हैं कि राजा, तो एक पुरुष प्रधान एक योग में भी ये प्रवेश कर गया क्योंकि हम वेदांतवादी, वेदांत में पुरुष प्रधान दोनों एक हैं, दोनों में अंतर नहीं है मूल रूप से, अगर उनके अंत में जाएं तो दे आर वन। लेकिन अंतर ये केवल इतना है कि इन मैनिफेस्टेशन दे अपीयर एज टू। मैनिफेस्टेशन जैसे ही प्रारंभ होता है तो जगन माता कार्य में व्यस्त हो जाती हैं और जो पुरुष एस्पेक्ट है, ब्राह्मण, शिव, वो पीछे खड़े हो जाते हैं, वो आधार बन जाते हैं उनके काम के लिए। इस बार भी हम लोग देखते हैं कि श्री अरविंद पीछे खड़े हो जाते हैं पार्षद में और जगन माता सब कुछ ऑर्गेनाइज करती हैं। वो जो श्री अरविंद के हृदय में है वही वो अभिव्यक्त कर रही हैं, बता दी भी हैं कि यही मेरा काम है जिसके लिए मैं आई हूँ, टू गिव अ कंक्रीट फॉर्म टू श्री अरविंदोस टीचिंग्स। लेकिन फिर भी जब समाधि को देखती है, माँ कहती हैं लेट देम वर्शिप दी टू देयर हार्ट्स कंटेंट, पूजा आपकी करें। इसका कई बार एक मिस इंटरप्रिटेशन भी लोग निकालते हैं कि मतलब माँ कह रही है कि समाधि की वर्शिप नहीं करो। नहीं, माँ ये नहीं कहती हैं, माँ हमारे सामने एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं कि कई ऐसे मनुष्य जो अपनी महिमा मंडन में लगे रहते हैं और अपनी पूजा, माँ कहती है नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को काम से मतलब होना चाहिए, लेकिन हमारी पूजा, हमारी सेवा सब हम लोगों के लिए, माँ श्री अरविंद माता जी हम लोगों को बता रही है श्री अरविंद, लेट देम वर्शिप डी टू डाई हार्ट्स कंटेंट। तो इसी प्रकार से एक पुरातन काल में कहानी है सावित्री की, डिवाइन मदर के इनकार्नेशन की, जब वो अशुपति जो सावित्री के पिता हैं उनके यज्ञ के कारण वो धरती पर आती हैं और आने का उनका प्रयोजन है एक सत्यवान को बचाना नहीं किंतु मनुष्य को बचाना। अब प्रश्न उठता है मनुष्य को किससे बचाना, मनुष्य की समस्या क्या है? तो अब जिस स्तर पे हम खड़े होते हैं उसी तरह से हम संसार को समझते हैं, उसी तरह से हम जीवन की समस्या को समझते हैं, उसी तरह से हम समाधान ढूंढते हैं। ये हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात है। अगर आप एक बंदर से पूछोगे कि बंदर की समस्या क्या है, वो कहेगा कि मुझे आसानी से फल मिल जाए। कोई, अब बंदरों में तो पॉलिटिशियंस होते नहीं है जो फ्री बीज दे सकें, पर अगर होते तो वो कहते कि वो बंदर जो हमें आकर के मुफ्त में सब कुछ दे दे बिना मेहनत किए, वो हमारे लिए भगवान है, किंग मंकी है। लेकिन जो असल किंग मंकी हैं जो वानर रूप धर के जब शिवजी आते हैं स्वयं, वो ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं चलो युद्ध करो, साथ में चलो। तो ये एक ही समस्या के दो साइड्स हैं। जो व्यक्ति भौतिक स्तर पे खड़ा होता है वो भगवान को तभी समझेगा जब उसकी भौतिक आंखों से देखेगा। उससे कहो कि मनुष्य की समस्या क्या है, तो वो कहेगा कि रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि पेट के लिए इतना ही चाहिए। और जो व्यक्ति ये प्रोवाइड कर दे कोई भी इज्म, कोई भी तरीका, तो वो उसके लिए भगवान है। ये हमारी दृष्टि की सीमा है। और इस बारे में एक माँ बड़ी सुंदर कहानी बताती हैं कि एक सेंट फ्रांसिस थे, वो एसीसी के, वो काफ़ी लोगों को हेल्प करते थे इस तरह से भौतिक स्तर पे। तो एक बार किसी ने कहा कि आप इतना जब हेल्प करते हो लोगों की, गरीबों को खाना दे रहे हो, ये दे रहे हो, तो गरीब तो बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि मिल रहा है। इस पर एक स्टोरी थी ना बड़ी इंटरेस्टिंग, कि एक राजा के राज्य में बहुत चूहे हो गए तो धान खत्म कर देते थे। तो राजा ने फिर ये कहा कि जो चूहे पकड़ करके लाएगा उसको हम रिवार्ड देंगे। तो शुरू में कुछ दिन चला, फिर धीरे धीरे उसने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, रिवार्ड पे रिवार्ड, रिवार्ड पे रिवार्ड। कहते ये क्या हो रहा है, इतने चूहे तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी। तो अब चूंकि रिवार्ड दे रहे थे राजा, तो लोग चूहे पकड़ के लाते थे, दिखाते थे, पैसा लेते थे, आगे फिर छोड़ देते थे, क्योंकि अब फिर से उसी को ले जाएंगे, रिवार्ड मिल रहा है। तो ये एक सीमित दृष्टि है। इस कैंटो का नाम है दी इशू, मुद्दा क्या है, समस्या क्या है हमारी असली। तो भौतिकविद केवल भौतिक स्तर पे देखते हैं, और भौतिक स्तर पे आप रोटी कपड़ा मकान एक दृष्टि है, पॉलिटिकल दृष्टि है, एक दूसरी दृष्टि है कि वैज्ञानिक दृष्टि से हम कैसे अपने शरीर को बचा सकें, सुरक्षित रख सकें, कैसे इसको स्ट्रांग बना सकें, जीवन को लंबा कर सकें, ये सब भौतिक स्तर पे एक कार्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आइदर और है, वो जरूरी है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान शरीर के लिए जरूरी है, इससे आत्मा की प्यास नहीं बुझती। और इसीलिए जब मनुष्य के पास रोटी कपड़ा मकान हो जाता है, तब वो दुकान और राज्य इसकी ओर दृष्टि करता है। तो प्राण के स्तर पे जो खड़ा है उसके लिए रोटी कपड़ा मकान की समस्या नहीं है, वो तो प्रोवाइड हो गया, अब उसको अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन करना है, तो उसमें वो लग जाता है, चाहे धन के माध्यम से या क्षत्रिया जैसे राज्य में एक्सपैंड करता है। ये वो समझता है कि यदि ये सब कुछ मेरे पास आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो मन के स्तर पर खड़ा है वो चीजों को मन से समझ रहा है, वो नाना प्रकार की फिलॉसफीज में मनुष्य की समस्या को, और इतनी फिलॉसफी कि आपको अंत में लगता है कि इसको मालूम भी है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि फिलॉसफी एक मन के अंदर जाला जैसे होता है। ये अपनी जगह ये ठीक है, ये जरूरी भी है कि हम रोटी कपड़े के मकान के पीछे हम कहें कि नहीं मनुष्य की ग्रीड है या इम्बैलेंस है, ये एक सोच है, दृष्टि है। तो मन के स्तर पर कोई ये भी कह सकता है कि ये शिक्षा का भाव है, यदि लोग शिक्षित होंगे तो ये समस्या नहीं होगी, वेल इन्फॉर्म्ड होंगे। कई लोग ये भी कहते हैं इस प्रकार से कि लोग वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, इस कारण ये समस्या है। तो एक अलग अलग लेवल पे हम समस्या को देखते हैं। लेकिन सावित्री और अगर अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य की समस्या क्या है, वो मूलतः आध्यात्मिक है। अब ये प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक समस्या कैसे हुई, क्या अध्यात्म ज्ञान से हमको रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा। ये और बात है कि मिल भी जाएगा, लेकिन बात ये नहीं है, बात यह कि यहाँ मूल्य समस्या की बात हो रही है। हमारे पास रोटी कपड़ा मकान है, हमारे पास धन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर सुख शांति नहीं है, जो आजकल हम देख रहे हैं। तो ये क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास ज्ञान का अभाव है। कई बार लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस की खोज नहीं, ज्ञान विद्या जब हम एकत्व का बोध हो जाता है तो हमारे पास स्वतः ही शांति और आनंद स्वतः स्फूर्त हमारे अंदर आ जाते हैं। तो उसका अभाव है, उस अभाव को कोई भी बाहरी चीज पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे अंदर विकास नहीं हुआ हमारी आत्मा का पूर्णता से। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि यदि आध्यात्मिक समस्या हमारा मूल है, अज्ञान जिसको कहा गया, अज्ञान इन द हाइएस्ट सेंस, नॉट मेंटल नॉलेज की बात नहीं हो रही, यानी हम स्वयं नहीं जानते कि हम कौन हैं। जिस दिन हम जान जाएंगे, इसको एक बड़े सुंदर ढंग से कहानी के रूप में श्री रामकृष्ण परमहंस बताते हैं कि एक सिंघनी का बच्चा, सिंह शावक पैदा हुआ और सिंघनी उस समय छलांग लगा रही थी तो मर गई। तो सिंह शावक बच्चा बड़ा हुआ बकरियों के साथ, तो बकरियों के साथ खाने लगा, या भेड़ थी और मिमी आने लगा, डरने लगा। एक दिन एक सिंह ने झुंड पर हमला किया तो अब सिंह शावक भी डर के भाग रहा है, मिमिया रहा है। तो सिंह ने कहा ये क्या चीज है, ये नमूना क्या है, ये क्यों डर रहा है मुझसे। तो वो जब पास में गया तो ये घबरा गया, तो लेके जाता है सिंह शावक को, कहता है देख तू जल के अंदर कौन है तू। और जब वो देखता है जल में अपना प्रतिबिंब, फिर सिंह को देखता है, फिर अपना प्रतिबिंब देखता है, सिंह को देखता है, फिर कहता है ये तो मैं ही हूं। और स्वामी विवेकानंद इस कहानी को जब सुनाते हैं तो बड़े सुंदर ढंग से एंड करते हैं। देन द लायन टोल्ड द बेबी, बेबी लायन, नाउ रोर एंड बी फियरलेस। भय किस लिए कर रहे हो? जिस दिन हमें यह ज्ञान हो जाए कि संसार की रचना कोई बाहर ऊपर बैठे हुए ईश्वर ने नहीं की, वो हैं लेकिन हम ही उसके अंश हैं, हम भी उसमें सहभागी हैं। सोचिए तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि, इसको अगर हाईएस्ट सेंस में ले जाएं तो कितना पावरफुल मंत्र है। हम हेल्पलेस विक्टिम्स नहीं है, नियति के दास नहीं है। नियति, हम मनुष्य उस अवस्था तक पहुंच सकता है जहां नियति आगे पूछे सर क्या लिखूं आपके लाइफ में, और आप कहें कि ये लिखो, ये मतलब ये नहीं कि सुख वैभव, जो आत्मवान होते हैं वो ये नहीं देखते हैं, ये लिखो मैं इस कर्म को करने के लिए आऊंगा, इसके लिए मुझे ये ट्रेनिंग ग्राउंड चाहिए, ये अनुभव चाहिए, वो लिखो। माता जी बताती है ना कि जो डेवलप्ड चैत्य सत्ता होती है वो अपनी नियति खुद निर्धारित करती है, कॉन्शियस होती है, और जो अनडेवलप्ड होती है तो उसकी नियति वो तो खुद ही फंसी हुई है जाल में, तो उसको प्रकृति की शक्तियां, वो दास है, अनीश है, तो प्रकृति की शक्तियां उसको घुमाती हैं, इधर उधर ले जाती हैं। अभी तो वो उसको डेवलपमेंट में प्रकृति सहायक हो रही है, उसको स्वयं नहीं मालूम कि वो कौन है। तो उसकी नियति का खेल एक जैसे मकड़ी के जाले में एक फंसा हुआ कीड़ा उसकी तरह होती है, यंत्रारूढ़िणी माया उसमें वो चल रही है, लेकिन उसके पीछे एक विजडम काम कर रही है कि हम ले आएंगे इस व्यक्ति को, इस चैत्य सत्ता को उस लेवल तक जब वो खुद आत्मवान होकर अपने स्वरूप को पहचान कर अपनी नियति खुद लिखेगी। तो ये डेस्टिनी है, यानी डेस्टिनी किसी मिस्टर चित्रगुप्त बैठ करके डिसाइड नहीं कर रहे। चित्रगुप्त को भी हम ही ने दिया है मटेरियल, देवताओं को भी मटेरियल कहां से मिलता है डेस्टिनी का? हमारे भाव, हमारी अनकही इच्छाएं, हमारी दुराशाएं, हमारी निराशाएं। हम जब निराश होते हैं तो अपनी डेस्टिनी हम खुद लिख रहे हैं। बाद में हम बोलेंगे कि भगवान हमारे साथ ये क्या हुआ, कहते सारे समय तुम ये सोच रहे थे मेरा जीवन हाय इतना व्यर्थ है, बेकार है, तो अब मटेरियल तुमने ये दिया तो मैंने कहा ठीक है लिख देता हूं तुम्हारा जीवन व्यर्थ है बेकार है, क्योंकि तुम ऐसा सोच, मटेरियल हम देते हैं भगवान को, और यदि हम ये कहते रहते हैं अपने अंदर ये भाव रहते हैं कि जैसा है अच्छा है सुंदर है, भगवान कल्याणकारी है, सब मंगल में है, भय नहीं है, श्रद्धा है, तो भगवान कहते हैं ये अच्छा मटेरियल है, इससे मैं एक इसकी सुंदर नियति लिखूंगा। तो हमारा अपना रोल है नियति को लिखने में, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि सावित्री वास्तव में एक लेवल पर अगर हम देखें तो इट इज कॉन्क्वेस्ट ओवर फेट। नियति जो फिक्स्ड हम मान के चलते हैं कि नियति को कोई नहीं बदल सकता, वो सावित्री कर रही है, बता रही है हमें कि बदला जा सकता है। लेकिन नियति को तब बदला जा सकता है जब हमारी आत्मा इस अचित अज्ञान से बाहर निकलकर, अंधकार से बाहर निकलकर अपने स्वरूप को पहचान ले। जब तक हम वो सिंह शावक हैं जो जानता नहीं कि मैं सिंह का बच्चा हूं और मिमिया रहा है, डरा हुआ है, भाग रहा है, तब तक उसकी नियति यही है। और जिस दिन वो जान जाता है कि मैं और सिंह एक ही हैं, मुझे थोड़ा बड़ा होना है, मैं सिंह हूं, उसके बाद कौन उसको भयभीत कर सकता है। अब वो शक्ति जो हमको सिंह शावक जो विमूढ़ अवस्था में स्वयं को बकरी और भेड़ समझे बैठा है, उस अवस्था से निकालकर हमको बोध कराती है अज्ञान अचित अंधकार से निकालकर कि तुम कौन हो, मेरे ही अंश हो। क्या कहते हैं श्री कृष्ण, ममे वंश, मेरे ही अंश हो। जस्ट इमेजिन एक दिन हमारे अंदर एक ये बोध आ जाए। किसी ने बड़ा सुंदर एक प्रश्न किया कुछ दिन पूर्व कि सर मैं ध्यान करती हूं तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं ऐसा ध्यान करूं कि आई एम मदर्स चाइल्ड, इज इट ऑल राइट? अब ये तो बोध आ जाना बहुत बड़ी बात है। आप कल्पना कीजिए एक दिन के लिए कि हम इस भाव से जीवन में जाएं कि आई एम मदर्स चाइल्ड, वो जगन माता जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, हम उनकी संतान है, किसका भय लगेगा? मृत्यु भी सामने खड़ी हो जाएगी तो आप बोलोगे, याद है जगन माता का एक बच्चा था कौन, कार्तिकेय, जिन्होंने तुमको क्या हालत की थी, दूसरे गणेश जी थे, दोनों से हार चुके हो, हम भी माँ की संतान हैं। तो उसके बाद मृत्यु क्या कहेगी, सर आप बोलो तो हमें क्या कहना है, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं, डिवाइन मदर आएंगी, जब वो बोलेंगी तो हम हिपे फुर्रे बोल के चलेंगे, और जब वो बोलेंगी नहीं रहना है तो हम इस संसार में रहेंगे। ये एक वो शक्ति है जो हमको इस अचित अंधकार से निकाल रही है, और वो शक्ति है डिवाइन मदर के प्रेम की, इट इज लव। अगर ओरिजिन में हम जाएं, श्री माँ बताती बड़े सुंदर ढंग से कि द डिवाइन कॉन्शियसनेस इज द क्रिएट्रिक्स ऑफ दिस यूनिवर्स। भगवान की चेतना ने, दिव्य चेतना ने इस संसार को की रचना की है, बट इट्स सेवियर इज लव। कौन सी शक्ति, संसार की रचना कर दी, अब उसमें सब खेल शुरू हो गया, खेल शुरू हो गया तो अब वो अपने ढंग से चल रहा है, वो तो अब ऑटो मोड में है। अब ऑटो मोड में बहुत सारी चीजें हो रही है, उसके पीछे विजडम काम कर रही है, लेकिन पीड़ा कष्ट ये सब कुछ है, अचित अंधकार के साथ हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो एक शक्ति है जो इस सृष्टि के एकदम तले के भी तले महाअंधकार में चली गई टू रेस्क्यू, सृष्टि को बाहर बचाने के लिए, अंधकार से बाहर लाने के लिए, और वो सृष्टि है, वो शक्ति है प्रेम। आदि काल से ये प्रेम ही है भगवान का जो इस सृष्टि के अंदर कार्यरत है रेस्क्यू करने के लिए। ये प्रेम ही है जो कभी श्री कृष्ण का रूप धर के अर्जुन के साथ बैठ जाता है कि चलो। वो बड़ी सुंदर एक सूरदास का पद है ना, कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जो प्रेम के वश भगवान, शेरविंद लिखते हैं, अगर किसी को लगे कि ये तो इमोशनल सेंटिमेंट है, सूरदास जी का भक्ति पद गाया है, शेरविंद लिखते हैं जब वो गॉड को डिस्क्राइब करते हैं, गॉड के बारे में लिखते हैं, ओ दाउ हु परवेडेस्ट ऑल दी वर्ल्ड्स बिलो। अब देखिए प्रारंभ कहां से कर रहे हैं, उल्टी दिशा से, नीचे से नीचे, निम्नतम, पाताल, सुतल, अतल, सबके अंदर जो आप ही हो, जो विद्यमान हो, परवेडेस्ट, ये भी नहीं कि आप केवल हो, येट सिटेस्ट अबव, पर बैठे हो ऊपर, स्वर्ग से लेके पाताल तक आपका ही साम्राज्य है, लेकिन आप इन सब के ऊपर हो, ट्रांसेंडेंट हो, मास्टर ऑफ ऑल हु वर्क एंड रूल एंड नो, ज्ञानियों के महाज्ञानी आप हो, राजाओं के राज राजेश्वर आप हो, सेवकों के सम्राट आप हो। आगे लिखते हैं, मास्टर ऑफ ऑल हु वर्क एंड रूल एंड नो, सर्वेंट ऑफ लव, लेकिन प्रेम के तो आप दास हो। वो प्रेम अलग अलग रूप से इस संसार में अभिव्यक्त हुआ है। सारी अगर दश अवतार की कहानियां भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर एक कॉमन सूत्र प्रेम है। ये हमारी अंधता है कि हम रामायण महाभारत में केवल एक युद्ध की कहानी देखते हैं। देयर स्टोरीज ऑफ लव, डिवाइन लव, जो एबिस में चला जाता है रेस्क्यू करने के लिए। तो वही प्रेम अब सावित्री के रूप में मूर्तिमान हुआ है, और वो एक सत्यवान को बचाने नहीं आया, वो तो बहुत आसान है भगवान के लिए, ऊपर से वो इसे मैनेज कर सकते हैं। एक सत्यवान ने प्रार्थना की, हम बहुत दुख तकलीफ में हैं, प्लीज रक्षा करो, आर्त प्रार्थना होती है, तो भगवान सुनते हैं। ये तो कई लोगों का इसका अनुभव होगा कि जब हम आर्त होकर प्रार्थना करते हैं तो तत्क्षण वो इंटरवीन करते हैं। लेकिन ये एक सत्यवान को बचाने की बात नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने सावित्री में शुरू में पढ़ा, सिंबल है ये, सत्यवान कौन है, हम स्वयं हैं, सत्य को धारण किया है लेकिन हम भूल गए हैं। तो प्रेम की शक्ति हमको उस अंधकार से निकाल रही है, और कैसे निकालती है प्रेम, ये देखिए ज्ञान और कर्म और प्रेम में ये अंतर है। ज्ञानी ऊपर खड़ा होगा, हमको डायरेक्शन देगा, ऐसे करो वैसे करो, हम कहेंगे हमको नहीं समझ में आ रहा, तो एक मैप निकाल देगा, आप मैप को पढ़ो, आप कह रहे हमको मैप भी नहीं समझ आ रहा है, तो जैसे होता है ना, आप फोन पर कंसल्टेशन कर रहे हो, टेली कंसल्टेशन, इस ये ज्ञान का मार्ग है, आप ऐसे करो वैसे करो, आप इससे बाहर निकल आओगे। कर्म का मार्ग, कर्म तुम करो, मुझे दो, मैं सहायता करूंगा. प्रेम doesn't डू ऑल दैट. प्रेम तो छलांग लगा देता है अंधकार में, एक हो जाता है उस कीचड़ के साथ, अंदर चला जाता है जहां दम घुटता है, और वहां से वो कमल के बीज लेकर के फूल बना रहा है. ये प्रेम है. ये कोई यहां जो जिस प्रेम की बात हो रही है साधारण प्रेम नहीं है. लेकिन अद्भुत बात यह है कि शेरविंद कहते हैं कंजुगल लव, मानवीय प्रेम. मानवीय प्रेम में यह क्षमता है कि वो मृत्यु को जीत सकती है. साधारणतः इसको हम लोग सती का जो कंसेप्ट है, अनुसुईया की कहानी, हम लोग कई बार इसकी बात कर चुके हैं. सीमा बताती है कि मानव प्रेम में वो शक्ति है. क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर चैत्य सत्ता है. लेकिन ये शक्ति किसी एक दो पर काम कर सकती है. हम लोग देखते हैं कि सतियों की कहानी ऐसी है कि उन्होंने मृत्यु से बचा लिया, यानी ऐसी ऐसी तपस्विनी हुई हैं कि उनका पति असुर है और भगवान नहीं मार पा रहे. क्यों? उनकी जो पत्नी है वो तपस्विनी है और वो एकनिष्ठ प्रेम करती है. कहानी है जालंधर की और कई सारी ऐसी कहानियां हैं जहां वो पत्नी के प्रेम की ऐसी प्रबल शक्ति है कि स्वयं शिव जो महासंहारक है सारी सृष्टि के, वो नहीं संहार कर पा रहे. लेकिन वो एक व्यक्ति को वो प्रेम है जो सपोर्ट कर, चैत्य सत्ता में इतनी प्रेम की प्रबल शक्ति है. लेकिन श्रीमा जिस प्रेम को ला रही है वो किसी एक सत्यवान को बचाने के लिए नहीं ला रही है. वे सब लोग जो इस प्रेम के प्रति खुल जाएं, वे सब इससे बाहर निकल सकते हैं. उनका प्रेम एक सीमित प्रेम नहीं है कि एक सत्यवान के लिए प्रेम है. वो धरती के अंदर जितने भी सत्यवान हैं, जिनके अंदर संभावना है, जो चाहते हैं इससे बाहर निकलना, जो रेडी हो चुके हैं जगन माता का हाथ पकड़ने के लिए. नहीं तो क्या है, वो एबिस में तो जाएंगी, लेकिन जब एबिस में आदमी उतरेगा तो उसका मुंह काला होगा. वो कहेंगे अरे भगवान है, उनको देखो ये तो कैसे भगवान है. वो नहीं समझ पाएगा कि ये वो हाथ है जो हमें बचाने के लिए आया है, सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस. तो बुक टू कैंटो टू में वर्णन है उस प्रेम का जो सावित्री ने धारण किया है अपने अंदर. और ये अद्भुत पंक्तियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जिनमें जगन माता डिवाइन मदर का ही वर्णन है. सावित्री के अनुभव जो हैं, सावित्री जब शेरविन डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो उन सावित्री की बात नहीं कर रहे हैं, वो डिवाइन मदर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही उन्हीं के एक्सपीरियंसेस सावित्री के एक्सपीरियंसेस हैं. लेकिन प्रारंभ ऐसे होता है ये कैंटो की सावित्री भोर को उठती हैं. हम लोगों ने ये पढ़ा था और बड़ा अद्भुत है उसमें. दिस वॉज द डे वेन सत्यवान मस्ट डाई, बड़ी क्रिप्टिक लाइन है कि माँ तो आ गई है, सत्यवान को मरने की क्या जरूरत है. जरूरत है. इसको दो लेवल पर हम देख सकते हैं. एक तो जो इसका यूजुअल लेवल है कि यू हैव टू पास थ्रू द माउथ ऑफ डेथ टू बी बॉर्न टू ए न्यू लाइफ. लेकिन इसका एक बहुत अद्भुत गूढ़ अर्थ है. जो अपनी मृत्यु से क्या होता है, हम अपनी पुरानी सारी चीजें हमारी समाप्त हो जाती हैं और एक नया जीवन प्रारंभ होता है. नॉर्मली मृत्यु से यही होता है. हम भूल जाते हैं कि हमारे पिछले जन्म में कौन थे, सगे संबंधी. लोग अक्सर कहते हैं कि भूल जाते हैं तो हम कैसे प्रमाण माने. ये तो ग्रेस है कि हम भूल जाते हैं. कितना कन्फ्यूजन हो अगर याद रहे कि अरे ये वो है, हमारा संबंधी था, अच्छा ये इसने मेरे साथ धोखा किया था, तो जीवन दो बार हो जाएगा. तो ये तो एक बहुत बड़ी कृपा है कि हम भूल जाते हैं. लेकिन चैत्य सत्ता के अंदर जो जरूरी स्मृतियां हैं वो रहती हैं. परंतु मूल चीज ये है कि यदि हम अपनी पुरानी चेतना को मरने के लिए तैयार नहीं है तो हम नए जीवन को प्राप्त करने के लिए भी तैयार नहीं है. तो सत्यवान की मृत्यु का आधा काम मृत्यु करती है. क्या करती है वो मृत्यु? यही करती है, पुरानी चेतना को खंड खंड करती है. अगर आप देखो मृत्यु का जो डायलॉग है तो उसे वो कहती है ये वाला प्रेम, वो वाला प्रेम, ये नहीं है, वो नहीं है. तो ये वाला पार्ट मृत्यु का काम है तोड़ना धीरे धीरे. और जो नया पार्ट है वो क्या है, वो सावित्री करती है. तो वास्तव में एट द एंड यू डिस्कवर कि मृत्यु जब रूपांतरित होता है, होती है मृत्यु, तो वो तो मास्क पहना हुआ था, डिवाइन नहीं, वो एक तरह का काम है. देखिए मृत्यु के पहले सत्यवान की पहचान क्या है. सत्यवान की पहचान है कि राजा दुमत सेना का बेटा है. और जब वो फिर से पुनर्जीवित होता है तो उसकी क्या पहचान होती है, वो कहता है ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल, है ना. इफ दिस इज शी ऑफ होम द वर्ल्ड हैज हर्ड, वंडर नो मोर एट एनी हैप्पी चेंज, ईच इजी मिरेकल ऑफ फेलिसिटी ऑफ हर ट्रांसम्यूटिंग हार्ट द एल्केमी हिज. तब तो केवल सावित्री सावित्री, और मृत्यु के क्षण भी वो यही करता है, सावित्री ओ सावित्री माई सावित्री लीन अपॉन मी फॉर ए वाइल. तो ये हम देखें कि सत्यवान की मृत्यु ये आवश्यक है. वो ओल्ड कॉन्शियसनेस हैज टू डाई टू बी बॉर्न टू ए न्यू कॉन्शियसनेस, एंड दैट न्यू कॉन्शियसनेस सावित्री अपने साथ धारण करके आई है. और इस कैंटो का प्रारंभ होता है एक छोटे से उस डिस्क्रिप्शन से जहां सावित्री उठी हैं और वो अपनी मेमोरी के द्वारा पीछे जा रही हैं कि मैं क्यों आई हूं, स्मरण कर रही हैं कि ये आज का दिन है, आज मैं इसलिए आई हूं. ये ऐसे कहानियां होती ना, जिस दिन श्री राम लंका पे अटैक करने वाले हैं तो पूरा वो जानकी के साथ उनका वो प्रथम क्षण से इस समय तक कौन है, क्यों आए हैं, उनका मिशन है ये. तो बुक टू कैंटो टू द इशू ए वाइल विड्रॉन इन सीक्रेट फील्ड्स ऑफ थॉट हर माइंड मूव्ड इन ए मेनी इमेज्ड पास्ट दैट लिव्ड अगेन एंड सॉ इट्स एंड अप्रोच डाइंग इट लिव्ड इम्पेरिशेबली इन हर ट्रांजिएंट एंड वैनिशिंग फ्रॉम ट्रांजिएंट आईज इनविजिबल ए फेटफुल घोस्ट ऑफ सेल्फ इट बोर द फ्यूचर ऑन इट्स फैंटम ब्रेस्ट. तो जो कल परसों बात हो रही थी अवचेतन के बारे में, कोई भी चीज कभी भी नष्ट नहीं हो सकती. ये फिजिकल लॉ है मैटर की, ये सब लेवल पर है. वी कैन नॉट फॉरगेट एनीथिंग, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग. हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं. ये यू कैन चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, दैट्स ऑल. नहीं तो वो कहीं पर सोई पड़ी रहेगी, आज नहीं तो कल सिर उठाएगी. तो यहां पर सावित्री उठती हैं तो ए वाइल विड्रॉन, तो उठ के वो सीधा अच्छा आज मुझे जाना है नहीं, पहले वो कलेक्ट कर रही हैं अपने आप को, वो अतीत में जा रही हैं, वो कैसे वो सारा साथ में जो हुआ, जो जो चीजें जो कॉन्शियस माइंड अभी विस्मृत कर गया है, लेकिन वो सब उनके स्मृति पटल पे उभर रही हैं. नीचे बड़ी अद्भुत लाइन है, इन ए लास्ट टर्न वेयर हेवन रेस्ड विद हेल. कैसे हेवन सत्यवान का संग, हेल उसकी संभावित मृत्यु या निश्चित मृत्यु. 12 पैशनेट मंथ्स लेड इन ए डे ऑफ फेट. तो अब वो कनेक्ट कर देते हैं हम लोगों को कि ये आज का दिन है, और फिर हम सब के लिए एन एब्सोल्यूट सुपरनैचुरल डार्कनेस फॉल्स ऑन मैन सम टाइम्स व्हेन ही ड्रॉज नियर टू गॉड. कोई पूछ रहा था कि 2020 बड़ा खराब साल है ना. अरे 2020 जगन माता के फाइनल कमिंग का साल है, ऐसे ही हम मिल लेंगे उनके साथ. थोड़ा तो होना चाहिए कि सब कुछ जो भय शोक शंका ये सब बाहर सरफेस पर आकर के जो कर पाएगा वही मिलेगा, नहीं तो वो पुराने जगत में वन विल लिव इन दैट. तो ऐसे थोड़ी, ये तो स्पेशल ईयर है. जब पहली बार भी आई थी जगन माता तब भी यही हुआ था, ट्रेलिंग बिहाइंड स्पेनिश फ्लू वर्ल्ड वार. अभी भी देखिए इन सब के बीच माय आवर ऑफ गॉड में शेरविंद बताते ना, बट ही हु कैन स्टैंड टू द ट्रूथ ऑफ हिज पर्पस इज ही हु विल स्टैंड इवन दो ही सीम्स टू पास अवे ऑन विंग्स ऑफ टाइम ही शेल रिटर्न. बात जीवन मृत्यु की नहीं है, बात यह कि जो अपने फेथ पर खड़ा रहेगा वो अगर जाएगा भी तो वापस आएगा उस चीज को प्रज्वलित करके. और जो जिसने इस समय घबरा गया डगमगा गया वो अभी अभी थोड़ा रिजेक्टेड माल है. तो जगन माता आ रही हैं, तो महाअंधकार भी आप देखिए, जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है ना, तो सिद्धिदात्री इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द डिवाइन मदर. शैल बाला से प्रारंभ के सिद्धिदात्री, उनके पहले कौन आती हैं, महारात्री. An absolute supernatural darkness falls on man sometimes when he draws near to God. An hour comes, an hour arrives when fail all nature's means, forced out from the protecting ignorance. आप try कर लो. अभी थोड़े समय पहले लोग कह रहे थे, अरे कुछ तो बताओ, कुछ करो. मैंने कहा क्या करो, अरे कोरोना यहां तक पहुंच गया. मैंने कहा अरे आपने तो उसको सर्वव्यापी बना दिया था, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो कि यहां तक पहुंच गया है. आप तो सब जगह देख रहे थे, तो नेचुरल है आप बुला रहे हो उसको कि सर्वव्यापी है ईश्वर, सर्वव्यापी हो ना हो लेकिन ये तो है, तो वो आ गया, वो सुन के पुकार आ गया। तो नेचर्स मीन्स आप सब प्रयास कर रहे हो। एक समय ऐसा आता है, मुहूर्त सत्यवान के जीवन में जो आया है, सावित्री के जीवन में, जब आपका कोई भी प्रयास, क्योंकि नियति ने यह निर्धारित कर लिया है, तो नियति को कौन बदल सकता है? केवल जो विधाता है, और कोई नहीं बदल सकता, और उनकी प्रेम की शक्ति, क्योंकि विधान भी एक कारण से बना है। फोर्स्ड आउट फ्रॉम द प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंस एंड फ्लंग बैक ऑन हिज नेकेड प्राइमल नीड, ही एट लेंथ मस्ट कास्ट फ्रॉम हिम हिज सरफेस सोल एंड बी द अनगार्ब्ड एंटिटी विद इन। जब ये अवसर आते हैं प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंस, अब कितनी अच्छी अद्भुत बात है, इग्नोरेंस हमको प्रोटेक्ट करती है, हाँ, फ्रॉम टू मच लाइट। अभी हाल में एक और खबर आई थी, डेक्सामेथासोन एक दवाई निकल गई है मैजिक, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, स्टीरॉइड। अभी भी हमारा दिमाग वहीं घूम रहा है, सीखा नहीं हमने कुछ, मतलब वो पुश करता रहेगा, जब अंत में हम कहेंगे भगवान तुम ही हो जो रक्षा कर सकते हो। जिस दिन ये भाव आएगा, एन आवर अराइव्स व्हेन फेल ऑन नेचर्स मींस, लेकिन वास्तव में ये भागवत मुहूर्त होता है, ये बुरी घड़ी नहीं है, ये हमारी सीमित सोच है, ये भागवत मुहूर्त होता है। और उस समय हमको क्या करना होता है? कास्ट फ्रॉम हिम हिज सरफेस सोल। सरफेस सोल क्या है? सोल ऑफ डिजायर, फियर, क्लिंग्स टू एवरी आउटर मीन्स, वो हमसे छीन लिए जाते हैं। जैसे द्रौपदी के जीवन में सारे 5 पांडव सबसे संसार के बलिष्ठ, सबसे बड़ा धनुर्धर और सबसे बड़ा गदाधर, धर्मराज उधर भीष्म प्रतिज्ञा वाले सब बैठे रह गए। उस समय हृदय में एक हल्की सी आवाज और भगवान प्रकट होते हैं। तो ये अवसर मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में भी आता है, राष्ट्र के जीवन में आता है, और संसार के जीवन में आता है। ये वास्तव में वही काल है, और ये इससे सुंदर तैयारी हो नहीं सकती। जब डिवाइन मदर आई, वी डोंट वैल्यू हर। तो अभी संसार की शक्तियां हमको ले जा रही हैं उस कोने में, डरा डरा के, भगा भगा के, वेयर वी क्लिंग टू द डिवाइन एंड नथिंग एल्स। फिर समस्या क्या है वो बताते हैं, बड़ा सुंदर। समस्या ये नहीं है कि आप एक बीमारी से बच जाओगे, दूसरी बीमारी से बच जाओगे, आप बच गए, शरीर तो वही है ना, जिसको कहते हैं पंच तत्व का बना हुआ, अचित अज्ञान अंधकार का गढ़ है ये, कितने दिन बचोगे? दूसरा रोग आएगा, तीसरा रोग आएगा, टूटेगा फूटेगा, फिर अच्छा नहीं, फिर अल्टीमेटली हम नया जीवन लेके आएंगे, उसके बाद फिर यही समस्या दूसरे रूप में शुरू होगी। ये तो टेम्पररी रेमेडीज हैं, हम लोग इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं, ये काम जिनको करना है करने दो, हम लोग तो परमानेंट रेमेडी की खोज में लगे हुए हैं, जो इस विष बेल को जड़ से निकाल दे। पॉइजन है उसका आप इलाज कर रहे हो, पॉइजन है इलाज कर रहे हो, पॉइजन है इलाज कर रहे हो, लेकिन वो पॉइजन क्यों है? उसको कालकूट को पीने वाला सामर्थ्य ये मनुष्य को अपने अंदर डेवलप करना है। और वो पॉइजन क्यों है, वो हमारे जीवन क्यों इससे बंधा हुआ है, यहां पर लाइंस हैं कि इसका अल्टीमेट बॉडी की डेस्टिनी के बारे में है। ए पॉइंट शी हैड रीच्ड वेयर लाइफ मस्ट बी इन वेन, और इन हर अनबॉर्न एलिमेंट अवेक हर विल मस्ट कैंसिल हर बॉडीज डेस्टिनी। हमारे संकल्प में ये शक्ति है, लेकिन अगर वो हमारी चैत्य का संकल्प हो, शरीर की डेस्टिनी की बात हो रही है, मृत्यु की बात हो रही है, रोग की बात हो रही है। फॉर ओनली द अनबॉर्न स्पिरिट्स टाइमलेस पावर कैन लिफ्ट द योक इम्पोज्ड बाय बर्थ इन टाइम, ओनली द सेल्फ दैट बिल्ड्स दिस फिगर ऑफ सेल्फ कैन रेज द फिक्स्ड इंटरमिनेबल लाइन दैट जॉइंस दीज चेंजिंग नेम्स दीज नंबरलेस लाइव्स दीज न्यू ऑब्लिवियस पर्सनैलिटीज and keeps still lurking in our conscious acts the trail of old forgotten deeds. लगता है कि नहीं, क्या है, हम भयभीत रहेंगे, उससे प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ये हमारे साथ जाएगा, इसने अभी कॉन्कर नहीं किया, जो काम हमने अधूरा छोड़ दिया है हमको करना पड़ेगा ज्यादा कठिन सर्कमस्टेंस में। इसलिए संकल्प को जागृत करके कि लेट अस डू इट वंस एंड फॉर ऑल, और फिर वो बताते हैं कि किस तरह से एन एपिसोड इन एन अनरिमेम्बर्ड टेल, इट्स बिगनिंग लॉस्ट, इट्स मोटिव एंड प्लॉट कंसील्ड, ए वंस लिविंग स्टोरी हैज प्रिपेयर्ड एंड मेड आवर प्रेजेंट फेट चाइल्ड ऑफ पास्ट एनर्जीज. यहां ये कर्म सिद्धांत को रिवार्ड पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे, चाइल्ड ऑफ पास्ट एनर्जीज. किस प्रकार की ऊर्जाएं, यानी संकल्प, विचार, भाग्य जिसकी बात हो रही थी, वही मटेरियल है. भगवान कहते हैं अच्छा ये मटेरियल दिया है, अब आप किसी को बोलोगे कि मेरे लिए ड्रेस बना दो, तो ठीक है सर मटेरियल सस्ता वाला कौन सा है, तो सबसे सस्ता कपड़ा लगा देगा क्योंकि आप उसका प्राइस नहीं देना चाह रहे हो. फिर बन जाएगा, आप दो दिन बड़े खुश होगे, फिर वो टूट जाएगा, फट जाएगा. आप दर्जी के पास जाओगे, कहेंगे सर आपने तो बोला था सस्ता मटेरियल. सस्ता मटेरियल तो ईगो और डिजायर का मटेरियल है, और अगर आपको पक्का चाहिए तो आपको प्राइस पे करना है. असली मटेरियल के लिए ईगो इज द प्राइस, एज सिंपल इज दैट. तो हमारे जो अभी प्रेजेंट एनर्जीज है, हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन कर रहा है, ये भी है इसमें. तो आज जो हम जिस तरह से सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जैसी हमारी भावना है, ये हमारे भविष्य का निर्माण कर रही हैं. आज नहीं तो कल, इस जीवन में, अगले जीवन में, कौन जाने कब. तो इस प्रकार से जो दूरदर्शी होते हैं, इस तरह से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं. जो सीमित दृष्टि वाले, शॉर्ट साइटेड, वो अरे मेरे जीवन में कल क्या होगा, परसों क्या होगा. और जो दूरदर्शी होते हैं, बैठ करके ध्यान मग्न हैं या संसार में प्रेम बांट रहे हैं, उनसे आप पूछो कि अरे इससे आपका क्या फायदा होगा, फायदा भी नहीं होगा. फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन यही वो चीज है जो कल, ये इसको कहते हैं डिवाइन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें आप डिपॉजिट कर रहे हो, यही वो बैंक है जो कभी क्रैश नहीं होता है. आप जब नेक्स्ट लाइफ में आते हो तो वो वाला आप ड्रॉ करते हो उसमें से. तो दिस इज हाउ हमारा प्रेजेंट. और इसके बाद वो सारा वर्णन है मनुष्य कैसे ये, श्री कृष्ण ने तो कहा यंत्र आरुणिनी माया, तो एज ए फ्लाई ऑन ए व्हील. लेकिन ये यंत्र कैसे चलता जा रहा है, और उसका वर्णन है दी स्लो रिवेंज, एन ओल्ड अकाउंट ऑफ सफरिंग एग्जॉस्ट, एक्विटेंस शी मस्ट विन फ्रॉम पास्ट बॉन्ड, एन ओल्ड अकाउंट ऑफ सफरिंग एग्जॉस्ट, स्ट्राइक आउट फ्रॉम टाइम द सोल्स लॉन्ग कंपाउंड डेट एंड द हैवी सर्विट्यूड्स ऑफ द कार्मिक गॉड्स, दी स्लो रिवेंज ऑफ अनफॉरगिविंग लॉ एंड द डीप नीड ऑफ परपेचुअल यूनिवर्सल पेन एंड हार्ड सेक्रीफाइस एंड ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस. इससे बचाने के लिए सावित्री आई है. कौन सी शक्ति को लेके आई हैं, अब वो हम पढ़ेंगे. इस बार वो ऐसी शक्ति को लेके आई हैं जिसके सामने एडवर्स होस्टाइल फोर्सेस, उनके सामने एक ही विकल्प है, या तो डिसॉल्व होना या रूपांतरित होना. हर बार आके अवतार मार देते हैं. अक्सर लोग भगवान ऐसा क्यों नहीं कर देता, इसको क्यों नहीं मार देता, उसको क्यों नहीं मार देता, इतनी सीमित सोच है हमारी. इवन पुराने जब अवतारों की कहानी देखें तो भगवान मारने के पहले कितने चांस देता है चेंज होने के. श्री कृष्ण और राम जी के अवतार में देखें कितने चांस देते हैं. तो ये तो जगन माता है, वो तो चांस नहीं, वो तो करेंगी. तो वो ऐसी शक्ति को अपने अंदर लाई हैं जिसके साथ ही केवल रूपांतरण संभव है. ये सीमा अपने कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 10 में, ये बहुत लंबा पैसेज है, शी सेज इट इज लव विच इज द ट्रांसफॉर्मिंग पावर. जो रूपांतरण करने की शक्ति, वो केवल प्रेम है. लोग सुपर माइंड की बात करते हैं, सुपर माइंड को स्थापित करने के लिए और सुप्रामेंटल रूपांतरण करने के लिए जो शक्ति मीडिएट करेगी वो प्रेम है. उसके बिना आप करेंगे तो फ्यूज उड़ जाएगा. इसलिए श्रीमंत कहते हैं इट इज द डिवाइन मदर एंड नो अदर ह्यूमन तपस्या जो मीडिएट करती है. वो कौन सी शक्ति जो मीडिएट कर रही है डिवाइन मदर की, वो है लव. सो वो लव को अपने अंदर लेके आई हैं जो एक और मनुष्य को तैयार करेगा, सृष्टि को तैयार करेगा. डिवाइन लव, ह्यूमन लव उसका डिस्टॉर्शन है, इतना ग्रॉस डिस्टॉर्शन है कि पहचान नहीं आता, लेकिन है उसी, वहीं से अल्टीमेट ओरिजिन वही है, लेकिन उसका डिस्टॉर्टेड प्रेजेंटेशन है. तो डिवाइन मदर उस प्रेम को लेके आई हैं जो रूपांतरित करने के लिए सृष्टि को आया है. अब यहाँ पे उनका वर्णन, ताकि उस जीवन से हम प्रेरणा ले सकें. एज एन एग्जाम्पल, ये पूरा लव के बारे में है, उनके उनके अंदर जो प्रेम है. नेवर ए रेयरर क्रीचर बोर्ड हिज शाफ्ट दैट बर्निंग टेस्ट ऑफ द गॉड हेड इन अवर पार्ट्स, ए लाइटनिंग फ्रॉम द हाइट्स ऑन अवर एबिस. ये प्रेम है. नेवर ए रेयरर क्रीचर बोर हिज शाफ्ट, शाफ्ट यानी वो एरो होता है ना. अब देखिए कामदेव और शिव जी की कहानी है, तो शिव जी कामदेव को नष्ट करते हैं क्योंकि तपस्या भंग हो गई. ये दिस इज अ वेरी सुपरफिशियल वे ऑफ लुकिंग एट इट. आप काम को नष्ट करोगे तभी आप डिवाइन प्रेम के लिए तैयार हो, तभी वो डिवाइन मदर के प्रेम के लिए आप प्रस्तुत हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. तो वो शाफ्ट, बर्निंग शाफ्ट, लेकिन वो आपको पीड़ित करेगा. तब तक पीड़ित करता रहेगा जब तक आप पूरी तरह तैयार नहीं हो इसके लिए. यहां उसका वर्णन है कि शी कुड कंटेन इट ऑल इन हर पॉइंटेड टू ए नोबलर काइंड. एक जगह बताते हैं कि इवन हर ह्यूमैनिटी वॉज हाफ डिवाइन नियर टू अर्थ वाइडनेस. अर्थ की वाइडनेस क्या है? जब सबको स्वीकार कर लेती है धरती माँ, सांप भी आता है तो कहते तुझे भी रुकना है, हाँ विषधर है, लोग तेरे से भयभीत होते हैं, वहां मुझे भी शरण दे दो. धरती कहती जा वहां बिल में, तू सो जा वहां, तू सुरक्षित रहेगा, कोई डरेगा नहीं तो कोई मारेगा नहीं. सिंह आता है उसको भी जगह दे देती है, हिरण आता है उसको भी जगह दे देती है. उसको कहती मुझे पता है सिंह तुझे खा जाएगा, तो मैं तुझे एक पावर देती हूँ, मल्टीप्लाई करने की पावर. अंत में जो सिंह है उसकी स्पेसीज कम हो जाएगी लेकिन तू कंटिन्यू करेगा. सबको वो शरण देती है नियर टू अर्थ वाइडनेस, बिना कोई इसके बड़ा छोटा देख के. धरती माँ कभी ऐसा नहीं करती, इंटीमेट विद हेवन. लेकिन वो साथी स्वर्गदूत हैं, उनके अंदर जो कुछ है वो सब स्वर्ग से प्रेरित है, वो दिव्य से प्रेरित है. एग्जॉल्टेड एंड स्विफ्ट हर यंग लार्ज विजन स्पिरिट वॉयजिंग थ्रू वर्ल्ड्स ऑफ स्प्लेंडर एंड ऑफ काम ओवर फ्लू द वेज ऑफ थॉट टू अनबॉर्न थिंग्स. और उनके आंतरिक जीवन में क्या चल रहा है बाहर से देख के नहीं पता चलता है, लेकिन वो ओवर फ्लू द वेज ऑफ थॉट टू अनबॉर्न थिंग्स. वो चीजें जो प्रकट नहीं हुई, माता जी की वो प्रार्थना है ना, मेक ऑफ अस द हीरो वॉरियर्स वी एस्पायर टू बिकम, मे बी फाइट द ग्रेट बैटल ऑफ द फ्यूचर दैट इज टू बी बॉर्न अगेंस्ट द पास्ट दैट सीक्स टू एंड्योर एंड वी मे बी रेडी टू रिसीव देम. चीजें हैं जो जन्म लेना चाहती हैं. जन्म कौन देंगी? डिवाइन मदर देंगी, क्योंकि वो डिवाइन मदर है. अब इसमें वर्णन है कि शी हर माइंड वॉज ए सी ऑफ वाइट सिंसेरिटी, यानी उस प्रेम को धारण करने के लिए क्या क्या चाहिए. सिंसेरिटी चाहिए, ट्रूथ चाहिए, लेकिन कौन सा ट्रूथ? बेयर ट्रूथ नहीं, पैशनेट इन फ्लो, हैड नॉट वन टर्बिड वेव, उस तरह की प्योरिटी. और फिर नीचे वर्णन है इमॉर्टल रिदम स्वेड इन हर टाइम बॉर्न स्टेप्स. अब देखिए पार्वती का लास्ट से पढ़ा है हम सबने, ये एक लाइन में वर्णन है इमॉर्टल स्टेप्स स्वेड इन हर टाइम बॉर्न स्टेप्स. एक और इसमें आगे लाइन आती है एज इन ए मिस्टिक एंड डायनामिक डांस ए प्रीस्टेस ऑफ इमेकुलेट एक्सटेसिस इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट. नृत्य कर रही है मंदिर के अंदर एज इन ए प्रॉफिट के वन ऑफ द गॉड्स. और वो नृत्य कौन से राग छंद ताल ले उसको ओडिसी कहेंगे, कुचिपुड़ी कहेंगे, भरतनाट्यम कहेंगे, कथकली कहेंगे, नन ऑफ दीज. ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट, जिसको आप किसी ताल लय छंद में नहीं, वैसा उनका नेचर है. शी इज डांसिंग टू दैट इमॉर्टल रिदम स्वेड इन हर टाइम बॉर्न स्टेप्स हर लुक हर स्माइल एवोक सेलेस्टियल सेंस. जहां वो दृष्टि कर देती थी, जहां वो मुस्कुरा उठती थी, वहां पे आनंद बिखेर देती थी. इवन इन अर्थ स्टफ एंड देयर इंटेंस डिलाइट पोर्ड ए सुपरनल ब्यूटी ऑन मेंस लाइफ. बिखेरती रही अपने प्रेम को, आनंद को, सौंदर्य को. जब कोई नहीं रिसीव करता था, रूठ जाता था, क्रोधित हो जाता था, तो माँ ये नहीं कहती तुम डिजर्व नहीं करते हो मेरा प्रेम. माँ कहती थी मेरे अंदर कोई कमी है, आई मस्ट मेक इट मोर परफेक्ट. ये अंतर होता है मनुष्य और दिव्यता में. मनुष्य क्या कहता है, हा इतना प्रेम किया, तुमने कद्र नहीं किया हमारे प्रेम की. भगवान क्या कहते हैं, मैं प्रेम की डोज थोड़ी और बढ़ाता हूँ, थोड़ा इसको दूसरे ढंग से ट्राई करता हूँ, ऐसे करता हूँ. गिव अप नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रेम भगवान का प्रेम है. तुलसीदास ने तभी तो लिखा है राम सो स्वामी कुसेवक मोसो. आपकी मैं अपने आप को देखूं तो मेरे लिए कोई होप नहीं है, तुलसीदास जी देख रहे, आपकी कृपा को देखूं तो पूरी होप है, सबके लिए होप है। ए वाइड सेल्फ गिविंग वॉज हर नेटिव एक्ट। सेल्फ गिविंग इज नॉट सेल्फ गिविंग इन, दोनों में अंतर है। सेल्फ गिविंग इज नॉट गिविंग इन टू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स बट सेल्फ गिविंग। उनका सेल्फ क्या है? सुंदर, उन्नत, वो उस पार्ट को, वही वो हैं, उसको दे रही हैं। ए वाइड सेल्फ गिविंग वॉज अ नेटिव एक्ट। ए मैग्नानिमिटी एज ऑफ सी और स्काई एनवेलप्ड विद इट्स ग्रेटनेस ऑल दैट केम एंड गेव ए सेंस एज ऑफ ए ग्रेट एंड वर्ल्ड। हर काइंडली केयर वॉज ए स्वीट टेम्परेट सन। डिवाइन कैसे होते हैं? हमने तो सुना है कि वो बस ऊपर बैठ के ध्यान मग्न है आंख मूंद के। अगर आप जाओगे मेरी ये समस्या है तो कहेंगे तो तुम्हारी इल्यूजन है, ये समस्या वमस्या कुछ नहीं है। वहां पे ये समस्या है। क्या समस्या है? माँ मेरे पास बनियान नहीं है। हाँ चलो, दो चाहिए थी, चार माँ ने दे दी। ये वो हर लेवल पे काम करती है वो प्रेम, काइंडली केयर। लोग कहानी है माता जी की, बच्चा गिर गया, पीछे पिताजी खड़े हैं। अब गिर गया बच्चा तो क्या उसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है? पीछे मुड़ के पापा रोने लगे, है ना। ये बच्चा उठा, भागता सीधा आश्रम में घुस गया, स्टेयर केस पे दौड़ के माता जी के पास जाके, माँ माँ माँ, मदर बाहर, हो व्हाट हैपेंड टू यू। उसको मलहम लगा रही हैं, फिर बाद में उसको चॉकलेट दे रही हैं। माँ के पास जितने परफ्यूम चॉकलेट बहुत लोग देते थे, वो सब बच्चों को देती थी। उसको चॉकलेट दे रही हैं माँ प्यार से। पिताजी धीरे 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 ऊपर आ रहे हैं, और जब तक वो आ रहे हैं बच्चा हंस के वापस। दिस इज अ काइंडली केयर हर किसी के लिए, अपने लिए। माँ ने लास्ट में रूम, वो भी द्युमन भाई और नवजात जी ने धन दिया, और द्युमन भाई इन दोनों ने मिलकर माँ के लिए ऊपर का कमरा बनाया। 53 की बात है। उसके पहले माँ के पास अपना कोई व्यक्तिगत कमरा नहीं था। जो कमरा है वही उनका वर्क प्लेस भी है, ओरिजिनल वर्क फ्रॉम होम। बाद में वो कमरा बना जिसमें माँ ने अपना। सो ये इस तरह से उन्होंने, हर काइंडली केयर वॉज ए स्वीट टेम्परेट सन, हर हाई पैशन ए ब्लू हेवेंस इक्विपॉइज। और कैसा प्रतीत होता था लोगों को उनके सामने, जो अभी हम लोगों ने बात की, एज माइट ए सोल फ्लाई लाइक ए हंटेड बर्ड एस्केपिंग विद टायर्ड विंग्स फ्रॉम ए वर्ल्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड ए क्वाइट रीच लाइक ए रिमेम्बर्ड ब्रेस्ट इन ए हेवन ऑफ सेफ्टी एंड स्प्लेंडेड soft repose, one could drink life back in streams of honey fire, recover the lost habit of happiness. संसार में जैसे एक चिड़िया जो एक तरफ आंधी तूफान, दूसरी ओर बहेलिया उसको हंट कर रहा हो, भागी भागी विवल होके उनकी गोद में जाके माँ, और माँ ने उनको जीवन दिया और उसके बाद वो सुरक्षित महसूस करने लगी। ऐसा ए डीप ऑफ कंपैशन, करुणा सिंधु इसी को कहा गया है, डीप ऑफ कंपैशन। ए हस्ट सैंक्चुरी, हर इनवर्ड हेल्प अनबार्ड ए गेट इन हेवन। पता भी नहीं चलता था लोगों को कि उनका जीवन कैसे बदल गया, एक क्षण में कैसे सब बदल दिया, क्या क्या उन्होंने अंदर में किया। पुरानी जब स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं, मेडिटेट किया चला गया व्यक्ति, श्री अरविंद ने बताया, यू नो व्हाट हैपेंड, पता नहीं, माँ ने कुछ बताया नहीं। तुमने क्या महसूस किया? हाँ उसके बाद मुझे कुछ डिफरेंट लगा। एक जो फोर्थ थी बीइंग था उसको माँ ने हटा दिया, शी डिड नॉट। 15 मिनट मेडिटेट किया साथ में। आप देखो उस समय के लोगों की जो डिस्क्रिप्शन है, लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। आप उनके हृदय को सीमित नहीं कर सकते थे, असीम, अनाथ के नाथ। भजन है ना कुछ बड़े सुंदर, नाथ अनाथन को शरण दीजिए। तो वो इस प्रकार से कभी पशुओं की चीख पुकार, कभी माँ कहती हैं कि कई बार वो ट्रांस में चली जाती थी, कहाँ कहाँ से लोग बुलाते थे। एक कहानी तो मुझे बहुत अधिक टच करती कि सडनली माँ ट्रांस में चली गई, और ऐसी कई कहानियां हुई हैं। तो माँ क्या हो गया, एक बच्ची और एक बच्चा, एक बम गिरा जिसमें सारा परिवार उनका नष्ट हो गया, घर नष्ट हो गया, ये दोनों बच्चे बच गए और वो रो रो के भगवान को पुकार रहे थे। और माँ जाती हैं और उनको ठीक जगह पर, वो कैसे पहुंचाएंगी, कोई व्यक्ति आ जाएगा। लोग कहते हैं नहीं नहीं वो तो वो व्यक्ति आया था, ऐसे ही काम करते हैं डिवाइन। कई बार लोग पूछते हैं तो मिरेकल क्या होता है, मिरेकल ये नहीं होता अचानक वो प्रकट हो गई सामने और उन्होंने कहा देखो मैं भगवान हूं। ये हम लोगों का बड़ा क्रूड आइडिया है। आज ही कोई पूछ रहा था खेल बात बात में कि अरे आप थे तो ये हो गया, आप नहीं होते तो क्या होता। मैंने बोला सहस्त्र भुजाएं सहस्त्र नयन सहस्त्र, हम लोग बचपन से पढ़ते आए, कौन किसका भगवान। एक तृण को जो उठा करके सामने जब रख देते हैं तो सारे देवता मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यक्ष बनकर। तो जो रावण की लंका नगरी में अशोक वाटिका में एक त्रिजटा को ले जाते हैं सीता मैया की सेवा में, भगवान तो किसी को भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये उनका तरीका है, ये नहीं कि बाहर से क्या, बाहर से तो कोई ना कोई आपको बनेगा यंत्र। कोई कोई है जिनके लिए भगवान स्वयं भी प्रकट हो सकते हैं या एकदम मनुष्य का रूप या देवता का रूप धर के आ सकते हैं, ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। माँ बताती कि सुपर माइंड इस तरह से काम करता है कि आपको लगेगा कि ये नेचुरल हुआ है। और वो क्यों, क्योंकि सुपर माइंड समग्र सृष्टि के अंदर, वो ऐसे नहीं कि वाइटल मिरेकल होते हैं कि अचानक बीच में कुछ हो गया और आपको वाइटल मिरेकल्स होते हैं। वो इस तरह से काम करेगा क्योंकि वाइटल मिरेकल में क्या होता है, एक अलग लेवल पे अव्यवस्था होती है, वो सृष्टि की सभी शक्तियों जो इंटरकनेक्टेड हैं उनको पुश करता है वन आफ्टर अनदर। जैसे आप बिलियर्ड टेबल पे करते हो ना, आपको वो बॉल को होल में डालना है तो आप सीधा वहां जाके नहीं करते हो, आप पीछे से हिट करते हो। कैसे हिट करते हो कि वो सबको टच करती हुई अंत में जो मास्टर बिलियर्ड प्लेयर है वो। तो इट इंटरकनेक्टेड है यूनिवर्स। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये नेचुरली हुआ, पर उस नेचुरल के पीछे जिनकी दृष्टि है वो सुपरनेचुरल को देख पाते हैं। द होल वर्ल्ड लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स। हम सीमित करते हैं, हम जब माँ को सीमित करते हैं तो हम वास्तव में अपनी सीमाओं को दर्शा रहे हैं कि माँ तो केवल यहाँ की है वहाँ की है, मैं विशेष बच्चा हूँ माँ का। कौन जाने कि वो कहीं दूर पड़ा हुआ एक रुग्ण व्यक्ति माँ माँ पुकार रहा है और माँ उसके पास जाते हों। ये हमारी सीमित दृष्टि। Love in her was wider than the universe. The whole world could take refuge in her single heart. The great unsatisfied Godhead here could dwell. प्रेम का देखिए वर्णन, तीन शब्दों में प्रेम, love, the great unsatisfied Godhead. प्रेम संतुष्टि नहीं होता है। क्यों संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका काम क्या है, एबिस को संतुष्ट करना। वही एक शक्ति है जो एबिस को भर सकती है। अब एबिस भी कभी संतुष्ट नहीं होता है। आप इसलिए देखें कि लोग अक्सर लोग कहते हैं मुझे इतना मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। इतना मिलता है कहते हैं, इसको थोड़ा इस तरह पुट करता हूं कि थोड़ा, एक गाना था ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, थोड़ा बस चाहिए। थोड़ा मिल जाता है तो मनुष्य कहता है थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और हो जाता है कहते हैं भगवान बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और हो जाता है तो कहते हैं थोड़ा ज्यादा। अब चेंज होने लगा सुर, थोड़ा ज्यादा के बाद ज्यादा, फिर उसके बाद आदमी दूसरी साइकिल में चला जाता है, कहते हैं आपने कुछ दिया ही नहीं मुझे, देखो मेरा जीवन एबिस है, वो भरेगा नहीं। आप कुबेर का खजाना ला के डाल दोगे वो खत्म हो जाएगा उसके अंदर। कैसे भरेगा, केवल एक शक्ति उसको भर सकती है, जो इनकॉन्शियंट को भी भर सके, ऐसा उसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन हो, इंटेंसिटी हो, जो बिना यूनियन के कोई भी बैरियर को ब्रुक नहीं करता है, छोड़ता नहीं है, सब बैरियर को चेंज करता हुआ अंत तक, जो इन्फिनिट है। तो यहां पर वही वर्णन है, द ग्रेट अनसेटिस्फाइड गॉडेड हियर कुड ड्वेल। उनके अंदर वो विशालता थी, वो शांति थी, वो सत्यनिष्ठा थी, वो सत्य था जिसके कारण वो उस बर्निंग गॉड हेड को अपने अंदर धारण कर सकती थी। और वो कैसे आई ये क्षमता सावित्री के अंदर, प्रेम की जिनको यंत्र बनना है, यदि किसी के अंदर ऐसी कल्पना है, शेरविंद एक जगह लिखते हैं, रेयर इज द कप फिट फॉर लव्स नेक्टर वाइन, एज रेयर ए सोल दैट होल्ड्स गॉड्स बर्थ, भगवान का अवतार करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए उतना ही रेयर है प्रेम की शक्ति को अंदर धारण करने के लिए। ए सोल मेड रेडी थ्रू ए थाउजेंड बर्थ्स इज द लिविंग मोल्ड ऑफ ए सुप्रीम डिसेंट। जो मोक्षवादी हैं, नहीं हमको जल्दी जाना है, ये प्रॉब्लम वो समस्या वो, तो उसके लिए क्या करना होता है प्रेम को प्राप्त करने के लिए अंदर में, द ग्रेट अनसेटिस्फाइड गॉड इट हियर को ड्वेल वेकेंट ऑफ द ड्वार्फ सेल्फ्स इम्प्रिजेंट एयर। वो प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाही, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही। छोटा पैसेज होगा ना, उसमें भी आपको अपनी जगह चाहिए, ईगो को जगह चाहिए। फिर कहते मुझे ही नहीं, मेरे जब परिवार वाले उनकी भी जगह चाहिए, इसकी भी जगह चाहिए। प्रेम कहेगा मैं कहाँ रहूं, आप आपके लिए भी एक अच्छा मैंने आसन बनाया है आ जाएगा, एक बूंद आ जाएगी। बट पूरी तरह प्रेम की शक्ति को धारण करने के लिए वन हैज टू बी फ्रीड फ्रॉम दी ड्वार्फ सेल्फ्स, ईगो सेल्फ्स इम्प्रिजेंड हियर, हर मूड कुड हार्बर हिज सबलाइमर ब्रेथ। सावित्री का मूड उनकी ऊर्जा को, उनकी शक्ति को, उनके प्राण को अपने अंदर धारण कर सकती थी। स्पिरिचुअल दैट कैन मेक ऑल थिंग्स डिवाइन, ये वो ऊर्जा है जो सब चीज को दिव्य बना सकती है। फॉर इवन हर गल्फ्स वेयर सी क्रिसिस ऑफ लाइट, इवन जो जिसको हम लोअर नेचर उसके नीचे जो अवचेतन है वहां भी प्रकाश में था उनका उनकी सारी सत्ता। लास्ट की चार लाइन, एन ओशियन ऑफ अनट्रेम्बलिंग वर्जिन फायर द स्ट्रेंथ द साइलेंस ऑफ द गॉड्स वेयर हर्स इन हर ही फाउंड ए वास्टनेस लाइक हिज ओन। हु फाउंड द वास्टनेस? लव। इन हुम? इन सावित्री। इन हर ही लव फाउंड ए वास्टनेस लाइक हिज ओन। हिज हाई वार्म सटल ईथर ही रिफाउंड। यहां वातावरण अच्छा है, महालक्ष्मी का प्रेम जो तैयार करता है डिवाइन लव के लिए। उनके बारे में क्या शेरविन कहते हैं, कहते हैं जहां वो अपने आप को ऐसी इस हृदय में पाती हैं जहां जेलसी हेट ये सब चीजों का जहर मिला हुआ है, क्वेरल, तो वो क्या करती हैं, शी स्टेप्स बैक, प्रतीक्षा करती हैं कि ये तैयार होने दो उसके बाद में आऊंगी, शी वेट्स। तो फिर काली जी कहती है मैं आ रही हूं उसके बाद मनुष्य कहता है मेरे जीवन में उठापटक क्यों हो रही है। शेरविंद जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ नियति इतना कठोर तरीका क्यों अपनाती है, तो कहते हैं क्योंकि मनुष्य इतना रिजिड है, इतना अगर वो मनुष्य रिफाइन हो जाए तो नियति अपना तरीका जेंटल बना देगी, क्योंकि मटेरियल ऐसा है लोहे की तरह खड़ा हुआ है, चट्टान की तरह, तो भगवान कहते हैं अच्छा हथौड़ा चाहिए, सोने की तरह हो जाएगा तो वो कहेगा हथौड़े की जरूरत नहीं है, थोड़े से फ्लेम से काम हो जाएगा। तो जैसी हमारी चेतना होगी वैसा भगवान का हमारे ऊपर तरीका होगा गढ़ने का। एंड मूव्ड इन हर एज इन हिज नेचुरल होम, उसने कहा ये घर है, प्रेम ने कहा ये मेरा घर हो सकता है। इन हर ही मेट हिज ओन इटर्निटी। नमस्ते।